दूसरा इसका मानी क्या है कि जिस माशरे में आप इस्लाम की दावत लेकर उठे हैं वहां सिर्फ अकायद और अखलाक की खराबियां ही नहीं थी बल्कि तहारत का भी निजाम खत्म हो चुका था। लोग गंदे रहते थे, नहाने का तसव्वुर नहीं था। आज भी आप कुछ मजाहब की हिस्ट्री पढ़ लें, वो नहाने को पसंद नहीं करते। तो अल्लाह के नबी को कहा गया कि अब इनको पाकीजगी का सबक सिखाओ। और एक दौर था कि मुसलमानों की पाकीजगी और उनका गुसल करना जरबुल मिसल था। जब इलाके मुस्लिम होते थे, नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन से इस्लाम आता था, आपको था कि लोग किस लिहाज से देखते थे। एक क्रिश्चियन बादशाह था, जब वो एक मुल्क में मुसलमानों के मुल्क को उसने कॉन्कर किया तो जाके पहला हुक्म क्या दिया, कहने का ये सब हमाम गिरा दो, वॉशरूम्स जहां गुसल करते, क्योंकि इनसे मुसलमानों की याद आती है। एक प्रीस्ट का जुमला किताबो तहारा के शुरू में आपके लिखा होगा, उसका भी यही खुलासा है कि मैं मुसलमानों की तरह सुबह उठ के रोज नहाता नहीं हूं। आज भी देखिए, नहाने का ताल्लुक सारा मुसलमानों में, वॉशरूम में, टॉयलेट में पानी का यूज करना, ये तो आप सब जानते हैं। तो अल्लाह के नबी को बताया गया कि इनको जाहरी तहारत की भी खबरें दो, क्योंकि और अरब जो थे ना, ये उजाड़ कौम थी, महजब नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आज भी कहीं ना कहीं इसका अक्स मिलता है। हरम की हद तक हैं तो आप देखिए जो सफाई सुथराई है, माशाल्लाह जरबुल मिसल है। लेकिन आप रास्तों में टॉयलेट्स यूज करके देख लें, मज़ारात पे जाके देखें, मज़ाफात है या जो भी इर्द गिर्द है, हाल खराब है। खाएंगे तो नीचे गिराएंगे और आधा खाएंगे आधा फेंकेंगे और इस तरह की बातें, दिस एंड दैट। तो अल्लाह ताला ये बताते हैं। तीसरा इसका मफहूम क्या है कि अपना लिबास साफ सुथरा रखो, यानी रहबानियत का रद्द करो। उस दौर में जब अल्लाह के नबी दीन लेकर उठे, उस वक्त लोगों के जहनों में तसव्वुर रहबानियत का ही था। लोग उसको मजहब का नाम देते थे, कहते थे जितना कोई गंदा रहेगा उतना पाक होगा। कोई उजले कपड़े पहन लेता तो कहते ये दुनियादार शख्स है। हालांकि इंसानी फितरत मैल कुचैल से नफरत करती है। तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि रहबानियत का जो नजरिया ना, उसको खत्म करो। ये भी एक इसका मतलब है। फिर एक और मफहूम है, और वो क्या कि अपने लिबास को इखलाकी ऐबों से पाक रखो। हकीकत है ना, एक लिबास हमारी रूह का भी है ना, अखलाक अच्छा करो। लिबास साफ सुथरा पाकीजा है, बहुत अच्छी बात है। फख्र नहीं, गुरूर नहीं, नुमाइश नहीं, ठाट बाट नहीं, शानो शौकत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लिबास आपकी शख्सियत का तारुफ कराती है, बहुत अच्छी बात है। लोग लिबास को देखकर जान लेते हैं ये किस किस्म का आदमी है। बाज दफा जो बड़े लोग होते थे ना उस दौर में, रईस और नवाब लोग, वो एक खास किस्म का लिबास पहनते थे। उससे भी रोका गया कि नहीं, आपका लिबास साफ सुथरा, तकबर वाला ना हो, छिछोरपना ना हो, और इस तरह, यानी सबका लिबास फर्क है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ऐ नबी, चूंकि आप अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं तो आपके लिबास से पता चले कि आप किस बड़ी हस्ती की तरफ पुकार रहे हैं। शाइस्ता लिबास हो। एक और मानी भी नोट कर लीजिए, और वो क्या है, अपना दामन पाक रखो। बोलने में, बात करने में कोई ऐसा गैर संजीदा जुमला ना बोल दो कि कल लोग उसको बुनियाद बनाकर दीन को बुरा कहें। आम लोग 10 बातें करें ना पार्टियों में बैठ के, महफिलों में, चल बैठ, चल मोटी, चल छोटी, चल किधर से आ गई, बुढ़ी घोड़ी, लोग कहते मेरी दोस्त है, कोई नहीं माइंड करेगा। और अगर वहां बिलफर्ज कोई ऐसा बंदा बैठा हो कि जो दर्स दे के उठा है या दर्स देने जा रहा है या दीन से मशहूर है, वो एक बात कर देना तो लोग इतना माइंड करेंगे। देखे देखे उनको ये बात सूट करती। मैं कहती हूँ लोग दीनदारों की बात तो छोड़े, उनके तो एक्शंस को भी नोट करते हैं, फिर भी माइंड करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो अल्लाह कहते हैं हर मुमकिन तरीके से अपने दामन को पाक रखो, फिर भी छींटे तो पड़ने हैं। जिन्होंने इतराज ढूंढने उनको फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन अपने आप को अच्छा रखो। इसलिए याद रखिए कि हम सिर्फ इस कुर्सी मेज पे बैठ कर नहीं टीचर बनते, या लोगों की नजरों में आप दीनदार तब नहीं होंगे जब आप अपने घरों में दर्स रखेंगे और आप बैठेंगे और बात करेंगे। आप अब चलती फिरती अपनी दोस्तों के अंदर दीनदार हैं, तो केयरफुल रहें, बी केयरफुल। छिछोरपन, मजाक, बेतकल्फी अब आप छोड़ दें। चाहे कोई आपकी 10 साल से दोस्ती है ना किसी दोस्त से, अब आप उसको बेतकल्फी से ना बोलें, अब उसको चुभेगा। कुरान पढ़ के भी ऐसी हो गई, इस तरह से किया, वो भी किया और दिस एंड दैट किया। तो ये चीजें मुख्तात जिंदगी का तकाजा करती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए, बद मामलगी, बुरे मामलों से बचो, ये भी इसका मानी नोट करें। डीलिंग्स को चेक करो, फेयर रहो, धोखा ना देना, डिसीविंग ना होना, लोगों का ट्रस्ट लूज हो जाएगा। लोगों को 420 ना दिखा दो, होशियारी ना दिखा दो, तुम्हारे कॉल और फेल का कोई एतबार नहीं रहेगा। फिर आगे देखिए, मजीद ताकीद है, वर रुज फहजुर, अपने से गंदगी को हटा दो। पहले कपड़े पाक करने का मानी था, ये तो जनरल था, अब रुज फहजुर में थोड़ी सी मजीद उसी की डिटेल है। ये कौन सी है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। गंदगी क्या है? सबसे बड़ी गंदगी तो दुनिया में शिर्क है, कि अगर मुआशरे में रहते हुए, लोगों को देखते हुए कोई गंदी ऐसी चीज आपके अकायद, ख्यालात, अखलाक और अमाल में आ रही है तो उसको निकाल दें, यानी मुआशरे का असर कबूल ना करें, ये मुराद है। अपना दामन बचा कर रखें। फिर इसमें एक और मानी क्या है, कि जिन बुराइयों से लोगों को रोक रहे हैं, इसका कोई हल्का सा शायबा भी आपकी जात पर लोगों को ना दिखे, आपकी जिंदगी में लोगों को कोई ऐसा रंग ना दिखे कि आप ऐसे हैं। आप देखिए, हमारा दीन करेक्टर बिल्डिंग की दावत दे रहा है। अगर आप इन आयतों को सुनते हुए जुमला लिख लेना, ये सात आयतें दाई अल्लाह की करेक्टर बिल्डिंग करती हैं, तो इस पे घंटों बात हो सकती है। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पूरे कोर्सेज भी करते हैं, कि देखो तुम अल्लाह की तरफ बुलाने निकले हो तो जरा अपना किरदार तो देखो, चलना फिरना देखो। बस चीजें अल्लाह की तरफ से अलाउड होती हैं, गुना नहीं होता, लेकिन दीन का और आपके मनसब का तकाजा है कि आप उसको छोड़ दें। मैं सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए समझा रही हूँ, ये कोई इतनी फर्स्ट हैंड एग्जाम्पल भी नहीं। मिसाल है, आप देखिए कि नेल पॉलिश लगाना, बजाते खुद नेल पॉलिश गुना तो नहीं है ना, ऐसी है ना, एक बैरियर है ना, कि अगर वजू करना है तो उसके बीच में आपके एक रुकावट बनती है। किसी को बहुत शौक है, आप उसको कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि जब पीरियड्स हों तो लगा लें, पहली बात है, 6-7 दिन मिल जाएंगे, आप शौक पूरा कर लेंगी तो काफी है। दूसरी सूरत है कि आपको इससे भी ज्यादा शौक है, तो इस होके आप लगाइए, वजू करें और फिर उससे पहले उतार के लगा, इस होके। लेकिन अब आप दर्स देने गई, आपको पीरियड्स ही थे, आप लगा के गई, वहां कोई आया, कोई एक दो चार, कुछ तो आपको जानते थे, कुछ नहीं, वो घर जाके क्या कहेंगे, उन्होंने नेल पॉलिश लगाई थी तो जायज है। अब अल्लाह कह रहे लगा लो, आपको लोग नहीं लगाने देंगे, बात समझ रहे हैं ना। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, और यकीन करें जो कुर्बानी आप सोचते हैं ना कि आपने कुरान सीखते हुए दी है, ये तो आपको बहुत छोटी लगेंगे जब आप सिखाएंगे। ऐसी स्क्रीनिंग होगी, ऐसी आपको लोग मशीनों में से गुजारेंगे, आप कहेंगे तुम खुश हो लो, मैं नहीं लेता, मैं नहीं करता। अल्लाह कहता कर लो, लोग कहते ना करो। तो ये सब चीजें हैं, और यहां जब आए और इमाम बुखारी की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? कौन सी करूंगी याद, आपको तब जुबान नहीं होनी चाहिए कि सफर में 1,000 अशरफियां थी, एक शख्स साथ था, उसको बातों में बता दिया कि मेरे पास 1,000 अशरफियां, गोल्ड कॉइन्स होते थे। उस शख्स की नीयत खराब हो गई, कहने लगा अच्छा। थोड़ी देर बाद उस शख्स ने खड़े होकर ना शोर मचा दिया, लोगों मेरे पास अशरफियां थी, चोरी हो गई हैं। थी कोई नहीं, उसका ख्याल था तलाशी लेंगे तो इमाम बुखारी के पास मिलेंगी, तो बस लोग तो नहीं समझेंगे उनकी हैं तो मुझे मिल जाएंगी। खैर, शोर मचा, तलाशी ली गई, देखते हैं क्या। सबसे तलाशी ली, किसी से कोई नहीं मिली, इमाम बुखारी से भी नहीं मिली। बात ठंडी होगी, बैठ जाओ, कोई नहीं है इधर, खत्म होगी बात, मामला खत्म हुआ। कुछ अरसे के बाद वो शख्स इमाम बुखारी को कहीं बाहर मिला, कहने लगा मुझे एक बात तो बताएं, अगर आपके पास गोल्ड कॉइन्स नहीं थे तो आपने कहा क्यों? कहा मेरे पास थे, मैंने झूठ नहीं बोला। कहा फिर तलाशी में निकले क्यों नहीं? कहा निकलने कहाँ से थे, जब तुमने शोर मचाया मुझे समझ आ गया तुम्हारी नीयत खराब है, और जब लोगों ने तलाशी लेनी थी मेरे पास निकलने थे। कोई मानता उस वक्त कि मेरी हैं कि तेरी हैं? तो मैंने क्या सोचा, उन अशरफियों को पकड़ूं तो पानी में फेंक दिया, क्योंकि मैं हदीस जमा करता हूं। आज अगर मेरे पास मेरी ही अशरफियां मिल जाती जिसको लोग तेरी समझते, कल लोग मेरे से हदीस कबूल ना करते। ये है वह रोज दफा जो वल्लाही माल दौलत चीजें सोना चांदी बिरुज बन जाता है अगर वो लोगों को आपके दीन से रोक दे। तो लिहाजा जिस हद तक करें, अपने आप को सच रखें, अपने आप को फेयर पे रखें। बाज दफा कई चीजें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल जायज होती हैं, आप दूसरों के साथ वो काम कर रहे होते हैं लेकिन लोग कहेंगे अच्छा जी ये है तो फिर ये तो वो, यानी जैसी सोच वैसी बात है। मुझे लगता है जी जहन है ना आपका मेरा, ये एक कुएं की तरह, जमजम भी इसी से निकल सकता था और कीचड़ भी इधर से निकलता। गंदी सोचें, गंदी बातें, कुछ लोग केयर ही नहीं करेंगे उन चीजों की क्योंकि दिमाग पाक है, और जब सोच में गंदगी है, अंदर कोई कुलबुलाती रहती है गंदी चीजें, तो फिर वहां से वही निकलेगा ना। आप किसी भी जगह रख दें, कीचड़ रख देंगे तो थोड़ी देर बाद कीचड़ की बात आनी शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से आप वहां कोई बड़ा अच्छा सा ड्रिंक बना के खुशबूदार रख दें तो थोड़ी देर में उसकी खुशबू आने लग जाएगी ना। तो अपनी सोचों को पाक करें, ये भी इससे मतलब निकल गया। आखिरी हुक्म, वला तमनुन तस्तकसिर, क्योंकि उसके बाद फिर अल्लाह की बात आती है। किरदार साजी में आखिरी हुक्म क्या है, और ज्यादा लेने की नीयत से लोगों को ना दो। ला तमनुन, तमनुन में क्या लफ्ज छुपा हुआ है? मन, मन कहते हैं इंसान को, ठीक है। अब इसकी भी जरा बहुत सारी एप्लीकेशन है, उसको भी नोट कर लीजिए। एक इसका मफहूम क्या है, जिस पर भी एहसान करो बेगर्जी से करो, तुम्हारी अता और तुम्हारी बख्शिश और सखावत और हुस्ने सुलूक सिर्फ अल्लाह के लिए हो। जरा सा भी इस ख्वाहिश का उसमें हिस्सा ना आए कि इस एहसान के बदले में तुम दुनिया का कोई फायदा ले लोगे। ये एक मानी है, आसान है ना। दूसरा मानी क्या है, नबूवत का जो काम आप कर रहे हैं, अगरचे अपनी जगह ये इंसानियत पे बहुत बड़ा एहसान है ना, अल्लाह के नबी का एहसान है कि नहीं। खुद अल्लाह ने हमें कह दिया, लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बार सफीहिम रसूल मिनहुम और मिन अनफुसिहिम। तो लिहाजा है तो ये इंसानियत पर एहसान कि आप लोगों को दीन सिखा रहे हैं और लोगों को हिदायत मिल रही है, लेकिन इस एहसान को जताइए नहीं, कोई फायदा अपनी जात के लिए हासिल ना करें। तीसरा मफहूम, ये ठीक है कि आप एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर अपनी निगाहों में अपने अमल को कभी बड़ा ना समझो। कभी ये ख्याल तुम्हारे दिल में ना आए कि नबूवत का ये फरीजा अंजाम देकर इस काम पे अपनी जान लगाकर तुम कोई अपने रब पर एहसान कर रहे हो। बस ला तमनुन दस्तक से अल्लाह पे एहसान ना जतलाओ, क्योंकि अल्लाह ने मौका दिया इसको ऑनर समझो। देखिए दो लफ्ज लिखे, एक है एहसान जतलाना और एक यह है कि उसको ऑनर समझना। कोई बहुत ही बड़ा इंसान है, मशहूर भी है, अच्छा भी है, और उसकी खिदमत करने में बहुत ग्लैमर भी है। लोग कहते हैं अच्छा जी आप बादशाह के गुलाम हैं, आप वहां जाने को और उधर जॉब करने को अपने ऊपर क्या समझते हैं? एक ऑनर समझते हैं। आप उस काम को जब ऑनर समझेंगे तो कभी आप उसका एहसान जतलाएंगे? आप कहेंगे मेरी जॉब ना छूटे, मुझसे ये खिदमत ना ली छोड़िएगा, मेरे लिए यही बड़ी नेमत है कि आप हैं। अब वो अय्यूब अल अंसारी को याद कर लेना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो सबकी क्या ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी के वो मेजबान बने। और ख्याल क्या था कि चूंकि आपकी भी हैसियत एक सरदार की, एक लीडर की है, तो आप बड़े सरदारों के पास जाएंगे, साद बिन माज के पास जाएंगे या उसैद जरारा या किसी के पास जाएंगे। लेकिन एक कमजोर सा सहाबी अबू अय्यूब अंसारी, वो भी दिल में तमन्ना रखता था कि अगर अल्लाह के नबी मेरे घर आ जाएं तो बड़ी बात है। बीवी से जिक्र भी कर दिया, तैयारी भी कर ली, कमरा भी सही कर दिया आपके लिए ऊपर के फ्लोर में, सुना हुआ ना वाक्य। अब अबू अय्यूब अंसारी का उस वक्त क्या ख्याल था कि मुझे ये ऑनर मिल जाए, और अल्लाह ने उनकी ऑनर कायम रखी क्योंकि उनके दिल में तड़प थी ना। तो जिस चीज पे आप भी अपने लिए लिख लें, कभी किसी नेकी के काम के बाद दिल में ये ख्याल भी आए ना कि अल्लाह के ऊपर एहसान है या बंदों पे एहसान है, तो लफ्ज एहसान को ऑनर में बदल दें। इट्स माई ऑनर, इट्स माई प्लेयर, इट्स अ प्रिवलेज फॉर मी। अल्लाह आपने मुझे ये मौका, बस इसको छीनिएगा नहीं, क्योंकि जो मेजबान सारा दिन एहसान ही जतलाता रहे, मेहमान रहेगा उसके साथ, मेरा हल एक रात भी नहीं रहेगा। चाहे आपके सगे नंद आई हो ना आपके घर में, आपके शौहर की बहन, और आप सिर्फ उठते बैठते एक दो बार जतला दें कि थक गई हो या बच्चे सता रहे हैं तुम्हारे या वो, वल्लाही मेरा नहीं ख्याल कि वो बहन आपके घर में रहेगी, चली जाएगी। तो अल्लाह कहते हैं मत नखरे किया करो, नखरे ना किया करो, मैं ले लूंगा तुमसे वापस। ये तो बड़ी किस्मत वालों को जगह मिलती है, तुम रूठे हम झूठे, जाते हो तो जाओ। अच्छा बात हो रही है ना इंतजार की, तो अब इंतजार के साथ इसको ले लें। हम कहते हैं बस कुरान पढ़ना था, पढ़ लिया खत्म, हम आगे कोर्सेज नहीं कर सकते। मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स ओके, अल्लाह ने आपको जो दिया नसीब करे, बहुत अच्छी बात है। वल्लाह ही अल्लाह मुझे कभी वापस नहीं बुलाएगा इस कमरे में, अगर मेरे दिल में सिर्फ पढ़ने की नीयत थी, मैं सिर्फ उस सोच के साथ इस कमरे में वापस आऊंगी इंशाल्लाह, जब भी बुलाया जाएगा, जब मेरे दिल में कौम फांजिर की तड़प हो। और फर्क होते हैं, हर बंदे का गोल फर्क है, और कोई आपको मजबूर नहीं करेगा, कोई लीगल राइट नहीं, कोई नो क्लेम एट ऑल, याद रखिए। और मैं हर साल जब भी ये आपकी फेस चलती है ना, तो मैं उस वक्त सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं आएंगे क्योंकि थक जाते हैं ना। ये तो नहीं कि आप आना नहीं चाहते, ये मैं नहीं कहती कि आप में से कोई आना नहीं चाहता, मेरा आपके में से तो किसी का गुमान नहीं, लेकिन इंसानी मजबूरियां लगी हुई हैं, और मैं अक्सर ही सोचती हूँ कि ये मुश्किल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब आ जाते हैं। शायद हमने जब पिछले कोर्सेज किए थे 2 या 3% स्टूडेंट नहीं आए, और उनकी लीगल प्रॉब्लम थी, और जब अगले साल दोबारा का नूर अल्लाह नूर ऑफर हुआ था तो उसमें आगे 3 लोग थे सिर्फ शायद, और वो उस साल में नहीं आ सके सीनियर से दूसरे में, लेकिन वो उससे अगले साल में आ गए, क्योंकि कुरान बैठने ही नहीं देता घर। कोई डॉक्टर 5 साल पढ़ के घर नहीं बैठता कि अब हाउस जॉब नहीं करनी, सिर्फ आपका दर्जा बुलंद होगा। मैं यही वो आपसे टिक टिक करके तो आपको अगले कोर्स में डाल देंगे। किसी की मजबूरी है, नहीं करना तो आप उनको बता देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन दुआ करें कि अल्लाह मुझे जाया ना करना। अधूरी रोटी कोई नहीं खाता, कच्ची पकी निहारी का कोई मजा नहीं होता। अधूरी कोशिशें करके बंदा कहाँ पहुंचेगा। जॉब्स उनको ही मिलती हैं हॉस्पिटल्स में जो सारे मरहले तय करके डायसेक्शन रूम से निकलकर आगे ऑपरेशन रूम में पहुंच चुके होते हैं। तो अल्लाह का काम क्यों ना प्रोटोकॉल से किया जाए। अल्लाह से ये दुआ करें कि बस हमारा नसीब अच्छा हो। मैं अक्सर सोचती हूँ कि नॉमिनेटेड लोग होते हैं ना, चोजन पीपल। हम सहाबा के और नबियों के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, देवर चोजन पीपल। तो आप क्या हैं? मुझे तो आप सब पे रश्क आता है। यू आर दी चोजन पीपल। कोई फख्र में नहीं आपको डाल रही, ना मुझे आदत है कोई तारीफें करने की, लेकिन यू आर चोजन पीपल। वल्लाही आप चोजन है। अल्लाह ने आपको चुना तो आप यहां पहुंचे। आप खुद से नहीं आ सकते थे। आप बाद में जब सोचेंगे ना, कभी फारिग होकर आप कहेंगे ये सफर गुजर गया। जिस दिन तकमील होती है इस कुरान की, तो बंदा कहते हैं हाय मैं समंदर को भीग गया। यकीन नहीं आएगा, इतने बड़े बड़े मरहले आए जिंदगी में। कहीं बच्चे हुए, कहीं पाकिस्तान गए, कभी शादियां हुई, हो गई, गुजर गई। और ये बेयकीनी आपकी आखिरी दिन तक रहेगी, यहां से जाने तक, कि अल्लाह जो मैं सोचती हूँ होगा। जब हम प्लानिंग करते हैं ना, यकीन करें कि अंदर का इंसान जमीन पे गिरा होता है। अल्लाह इतनों को टाइम दे रहे, इतनों से बातें करें, होना कि नहीं, कहीं एक हादसा में रोक सकता है, अल्लाह ना करे। और जब वो काम होता है, और जो वापसी का सफर है, मेरा तो रोते हुए गुजरता। कितने गुनाहगार, इतने कमजोर इंसानों के मुंह से निकली हुई बातें अल्लाह तूने बिल्कुल निभाई, एक दर्स नहीं हिला, एक कमिटमेंट नहीं लूजी, और सब कर करा के आज हम अपनी वापसी की फ्लाइट लेके आ रहे हैं। वो वक्त मेरे लिए अनबिलीवेबल होता है। और अल्लाह के आस पे इंसान काम करता है, अपने रब पे काम करना। और अगर इस रास्ते में कोई मुश्किलें आए, आती होंगी छोटी छोटी, हम तो कुर्बानी इसको भी कहते हैं ना, सारे घर वाले सैर पे गए तो मैं इधर बैठी, मियाँ पाकिस्तान चले गए मैं इधर रह गई। हमारे लिए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना, होती है, हर इंसान की होती है। तो अल्लाह ने उसका भी जवाब दे दिया, वली रब्बी का फसबिर। जब अल्लाह के काम करते हुए तुम्हें कोई तकलीफ आए ना, तो फिर सब्र भी रब के लिए करो। पीछे क्या पढ़ा आपने और मैंने सब्र पे, पिछली सूरत में जिसमें आपको बताया था कि आंखों का भी सब्र है और जुबान का, कोई याद है किसी को? आए थे, मैं आई थी तो उसे अगले ही दिन जो सूरतें थी, सबरन जमील था। हाँ जी, मेरा फसबिर सबरन जमील। आप यहां भी जरा इसको देख लीजिए, इससे क्या मुराद है कि वली रब्बी का फसबिर। लिख के देखें, आप कोई काम करते हैं तो किसी के लिए करते हैं ना, खाना पकाते हैं तो बच्चों के लिए, घर साफ करते हैं तो अपने लिए या मियाँ के लिए, कुछ भी। यहां रब के लिए सब्र करने से क्या मुराद है? असल में पैगाम है कि जो काम आपके सपुर्द किया जा रहा है ना, है बड़ी जान जोखों का। इस सब्र से पहली खबर तो ये मिल गई कि काम आसान कोई नहीं, भेड़ों के छज्जे में हाथ डालना है। मसाइब आएंगी, मुश्किलात आएंगी, तकलीफों से वास्ता पड़ेगा, तुम्हारी अपनी कौम तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, सारा अरब तुम्हारे खिलाफ सफ बंदी कर लेगा। लेकिन इस रास्ते में जो मुश्किल आए उसको जुबान पे नहीं लाना। आप जुबान पे लाएंगे ना, अल्लाह कहेगा नो प्रॉब्लम, हम तुम्हें बदल देते हैं, पीछे हटिए, किसी और को ले आते। अपने रब की खातिर इस पर सब्र करना, अपने फर्ज को पूरी साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी से अंजाम देना, ये सारे मानी इसमें आएंगे। कि अपने रब के लिए मेहनतें करना, इससे बाज रखने के लिए खौफ, तमा, लालच, दोस्ती, दुश्मनी, मोहब्बत, हर चीज हमारे रास्ते में हायल होगी। देखिए बड़े सख्त इम्तिहान है, कभी मोहब्बतों का इम्तिहान आएगा आपका अल्लाह के रास्तों में, कभी खौफ का आएगा, कभी तमा जॉब मिल जाएगी, लालच होगा मियाँ की अब मदद करो, जॉब करो, काम करो, दिस एंड दैट, कहीं दोस्त दुश्मन बनते दिखें, कभी दुश्मन आके डराएंगे। अल्लाह कहते ये सब होगा, इन सब के मुकाबले पे मजबूती के साथ अपने मौकफ पे जम जाओ, तुमने हटना नहीं है। आप सोच सकते हैं ये हिदायत अल्लाह के नबी को दूसरे ही दिन के सबक में क्यों दी जा रही है? और मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मेरे इमेजिनेशन में पता क्या आ रहा है, जब भी कोई नया कोर्स शुरू होता है ना, तो हम शुरू में दो चार क्लासेस और सेशंस में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करते हैं, बैठना ऐसे है, करना ये, तसलियां बहुत देते हैं। यानी मैं हंसती हूँ जब भी कोई कहता है ना आप आ जाए नया कोर्स शुरू करना है तो आप थोड़ा सा शुरू करा जाए, तो मैं उनको हंस के कहती हूँ आपने मुझसे तसलियां दिलानी है, क्योंकि आने वालों के कदम जमाने होते हैं ना। मुझे इन आयतों को पढ़कर ऐसे लग रहा है कि अल्लाह अपने नबी को तसलियां दे रहे हैं, होगा ये सब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन डोंट वरी। और अगर आप गौर करें ना, तो इन सारी इंस्ट्रक्शंस में जो अल्लाह अपने नबी को शुरू में दे रहे हैं ना, और इसके बाद आपने उठ के जो नबूवत का काम किया है, इन छोटे छोटे जुमलों पे अगर आप गौर करें ना, तो आपका दिल गवाही देगा कि नबुवत के काम के आगाज में या दावत के काम के आगाज में इससे खूबसूरत हिदायत नहीं दी जा सकती। यहाँ एक अमल की बात भी लिखे, शॉर्ट मैसेजेस, लंबे लंबे कोई खत नहीं लिखे अल्लाह ने नबी को। ये होगा, हम इतनी लंबी बात करते हैं अगले को याद ही नहीं रहता कि असल बात क्या थी। ब्रीफ मैसेज, छोटा कंसाइज, छोटी बात करो, उसका असर ज्यादा होता है। वो एक लफ्ज याद रखेगा ना कोई आपका, चलिए लफ्ज नहीं तो जुमला बोल दें, जुमला याद रखेगा। तो अगर आपने एक पैराग्राफ बोल दिया तो उस पैरे में से कितना को इंसान का जहन कंटेन कर सकता है। छोटे मैसेज लेकिन टू दी पॉइंट। आप लिख लीजिए इन आयतों के नीचे टू दी पॉइंट इंस्ट्रक्शंस, कैसे करना है, जिंदगी कैसी हो, इखलाक कैसा हो, मामलात कैसे हो। फिर नीयत भी बता दी, नीयत क्या हो, जहनीयत बता दी, तर्ज़े फिक्र क्या हो, इंजाम भी बता दिया, और रास्ते की सारी हर्डल्स भी बता दी गई। देखिए इस रास्ते में ये सब होगा, आप मेंटली प्रिपेयर रहे। अब आप जरा एक दफा सोचिए कि जो लोग नाउज़ुबिल्ला नबी सल्लम से दुश्मनी की बुनियाद पर ये कहते हैं कि नाउज़ुबिल्ला, यानी वो कहते हैं जो वही आती थी ना, जिसको मुस्लिम कहते हैं कि रेवोल्यूशन या वक्त थी, वो कहते हैं ये नबी सल्लम पे दौरे पड़ते थे, अल्लाह ना करे। अब जिसके जहन में ये कि अल्लाह के नबी पे दौरे पड़ते थे और उस पे आप ये कलाम जुबान से जारी करते थे, आप जरा ये सारी बातें सुने तो आपको लगेगा कि ये ऐसे ही था। क्या ऐसी काम की बातें एक मजनू दीवाने के मुंह से निकल सकती हैं? कभी भी नहीं हो सकता। कहते थे सरा के दौरे पड़ते हैं, स्वादरा आइन बीमारी थी, कहते थे आपको सरा के दौरे पड़ते हैं और उसमें आप बहकी बहकी बातें करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, जिसको नहीं समझना होता ना वो नहीं समझता, इसलिए ऐसी बातें कर कर खुद को भी जलाते हैं और दूसरों पे भी बात करते हैं। और ये सारी बातें कर करा कर अल्लाह ताला हम सबको लेके आते हैं। अब यहां से आगे मौजू पलटेगा, यहां तक क्या बात है, वही के इब्तिदा की। ये आप में से एक दो कमेंट्स हैं, इसको पढ़ के आप में से कोई शेयर करना चाहे फिर आगे चलेंगे। ये लिखती हैं सासा जी, कुम फानजिर की तो मैं बहुत अरसे से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला प्लीज मेरी सारी जिंदगी अपने रास्ते में लगा दें, लेकिन इस दुआ के पीछे जो मेरी नीयत है वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं इस रास्ते से हट गई तो कहीं मैं पुरानी रविश पर ना लौट जाऊं। अपने आप को सीधे रास्ते पर रखने के लिए ही ये दुआ करती हूँ। अभी दुआ की नीयत में दूसरों की फिक्र नहीं है, सच बोला इन्होंने, यानी कोई इसमें लगी लिपटी नहीं है कि करती तो है लेकिन अपने लिए भी सोच रही है कि मैं जमी रहूं। और यकीन करें कि हमारा अपना जमा होना ही तो दूसरों को लेके आता है ना। क्या मेरी नीयत खराब है, या भी मेरा तस्किया नहीं हुआ, या फिर मैं सेल्फिश हूं? आप में से कोई इसका जवाब देना पसंद करेगा? क्या जवाब है? ये सेल्फिशनेस है कि अल्लाह मुझे इसलिए खड़ा रख ताकि मैं ना पलटूं। ये बिल्कुल सेल्फिश नहीं, ये पहला मरहला ही होता है। देखिए आप वही कहते हैं ना, कू अनफुसकुम, पहले अपने आप को बचाओ, वाहलीकुम नारन, किसी को अपने असिस्ट करना है तो पहले आप भी तो सिक्योर होंगी ना। जी रम, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
जी मैं यही कह रही हूँ, बहुत अच्छी बात है कि मैंने लिखा है कि मैं जुड़ी रहा हूँ, ये सेल्फिशनेस नहीं होगी क्योंकि अब खुद काम रहेंगी तो फिर आगे दूसरों के लिए भी सोच सकेंगी इंशाल्लाह।
जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, और आप खुद कायम ना रहे सिर्फ दूसरों की मदद करें तो बहुत जल्दी लुढ़क जाएंगी। इनकी बात से बल्कि एक बहुत अच्छी बात समझ आ गई है कि अगर हम दूसरों के लिए खड़े हो और खुद अभी कायम ना हो तो हम ज्यादा देर नहीं खड़े हो सकते, फिर हम भी गिर जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है अगर ये सोच है। जी कोई और इनको जवाब देना चाहते हैं? नहीं तो ये एक और कमेंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जी आप अरफा।
मैं वो जो ऑक्सीजन मास्क जो देते हैं उसकी मिसाल में दुआ में आई थी, आप भी कभी देती हैं कि जो है पहले आप अपने आप को सिक्योर करते हैं ना, तो अगर आप जो है खुद करना चाह रही हैं तो इसका मतलब कि आप अपने आप को सेव करेंगी जन्म से, फिर आप दूसरों को बचाएंगे।
देखिए जब आपकी अपनी ऑक्सीजन उतरी हुई है तो दूसरे को कैसे देंगे, राइट? तो ये कुरान क्या है हमारे लिए, ऑक्सीजन मास्क। सांस अच्छा आता है इसकी रोशनी में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिखती हैं कि आज जब मैं सुबह क्लास के लिए उठ रही थी तो थकावट का एहसास था, लेकिन इसी वक्त ये सोच मेरे दिल में आई, तशक्कुर के जज्बे के साथ उठ, शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी है, और अगर ये कुरान मेरी जिंदगी में ना होता तो मैं क्या करती? पुरानी जिंदगी, डिप्रेशन और दीगर फजूलियात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमसे ये नेमत कभी ना छीने, और ये चीज रोज हमें एक एनर्जी दे रही है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करें और इस्तकामत दें, आमीन। तो फिर यहाँ आके क्या हालात हैं? जी इशरत, घर में होती तो बिस्तर पे आराम ज्यादा मिलता या यहाँ इस कुर्सी पे आराम ज्यादा मिल रहा है?
मैं तो इतना शुक्र अदा करती हूँ सादा जी के, अच्छी
اچھی چیز ہے کہ میں آپ کو لفظوں پہ تو نہیں بیان کر سکتی میری جو فیلنگز ہیں دیکھتی ہیں.
ہر ایک کی یہی ہے, آپ بیان نہ کریں سب کو پتا ایسے ہی ہے نا. اللہ نہ کرے وہ دن آئے جو ہماری زندگی سے یہ کتاب چلی جائے. جی آپ فرزان.
شکر کے ساتھ اساتذہ میں اتنا مجھے فیٹ وہ کر رہی ہوں جیسے میں نے 30 پارلیز کی ہیں. میں یہاں آ کے سن کے کبھی کچھ کہنا بھی ہوتا ہے تو زبانی فر فر بول جاتی ہوں.
ہم جتنا اللہ کی بات کے قریب رہیں گے نا اتنا ہماری زندگی میں برکت اور خیر ہوگی. پہلی مرتبہ جو حج کا وقت آیا اور وہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں کہ اس وقت جو حالات تھے کہ باہر کے آنے والے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے بدگمان کرے, پروپیگنڈا ہو. اب آپ پڑھیں, یہ تفسیر ساری ہو گئی بھی ہے کیونکہ میں نے شروع میں اسی سوچ کے ساتھ ساری اکٹھی بات کی تھی تاکہ بیچ میں توڑنا نہ پڑے. جو ہم نے بات پڑھی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے دوسروں کو روکنے کی جو سازشیں کی تھیں اور جو وہ باتیں تھیں اسی کے اندر سے اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس نبی کی بات سمجھ نہیں آتی یا تم اس پہ برا کرتے ہو. ولی ربی کا فصبر کا حکم تو ان کو دیا تھا, اب ذرا تم سوچو کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ زندگی ختم ہو جائے گی, یہ دنیا ختم ہوگی اور وہ وقت بالکل قریب ہے جب فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. پہلے تو دیکھیے کہ قرآن میں جہاں بھی سور کی بات آتی ہے نا تو کیا آتا ہے, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ, نفخہ. نفخہ کہتے پھونک مارنے کو, بلو ایسے. یہاں نقیرہ, نقیرہ کیا ہے؟ اردو میں آپ نے سنا ہے نقارہ. پہلے دور میں مائکرو فون اور ساؤنڈ سسٹمز تو نہیں تھے نا, تو جب جنگوں میں جاتے تھے اب لوگوں کو بتانا ہے کیا کریں تو ایک بڑا سا جیسے گھنٹہ کہہ لیں یا ایک, میرے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے کہ ڈنڈی کے ساتھ نیچے لوہے کا ایک ایسا بجنے والا آلہ اور اس کو جا کے کسی چیز پہ مارتے تھے جس سے زور کی آواز آتی تھی تو قافلے والے سمجھ جاتے تھے کوچ کرنا ہے یا بیٹھنا ہے یا سٹاپ لینا ہے. لوگوں کو قریب کرنے کا طریقہ تھا, وہی لفظ ہے یہ ناقور. وہ کہتے ہیں نا کہ بنجارے نے ناقور بجایا, کچھ ایسا لفظ ہے نا. جی آپ بتائیے.
جی ایک اور ہے کہ آج سے 30-25 سال پہلے سے میں مسجد کے اندر جب روزہ شام کو افطار کرتے تھے وہ نگارہ بجاتے تھے.
جی پہلے ایسے سائرن بجتے تھے نا, تو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, آپ اپنے اوپر لیں. ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں اپنی زندگی کے ہنگاموں میں, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ أَسِيرٌ, بس وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا, اسر سے اسیر. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ, کافروں کے لیے ہلکا نہیں ہوگا یسر سے. پھر کیا کہے گا اللہ تعالیٰ, ذرنی, چھوڑو مجھ کو. وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا, اور اس کو بھی چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا. کون تھا یہ؟ ولید بن مغیرہ. ابھی اس کے بارے میں کچھ اور باتیں بتاتی ہیں آپ کو, لیکن خود کو کہتا تھا وحید ابن وحید. وحید عربی زبان میں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یونیک. کہتا تھا یونیک, سن آف یونیک. اللہ نے وہی لفظ ادھر استعمال کر دیا. یہ جو خود کو بڑا یونیک کہتا ہے نا کہ میرے جیسا کون ہے پورے مجمع میں, لاؤ اس کو میرے پاس. وجعلت له مالا ممدودا, اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا. ممدود مد سے, لمبا مال کھینچنے والا, بہت کثرت کی طرف اشارہ ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا, اور حاضر رہنے والے بیٹے اس کو دیے, یعنی بیٹے بھی وہ جو اس کے پاس رہتے ہیں, کیونکہ بیٹے ہونا اور بات ہے اور بیٹوں کا کمپنی دینا اور بات ہے. ہر وقت حاضر بچے اس کے پاس ہے. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. مہد مہدا سے, تمہیدہ میں مہدہ ہی چھپا, دونوں کا ایک ہی روٹ ہے. یعنی اس کو اللہ نے جو دولت مال سرداری دی تھی اس کو میں نے اور زیادہ دیا, مراد یہ کہ نعمتیں دیں. ثم یطمع نزید, پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ اسے میں اب اور دوں گا. یعنی دنیا میں اس کو جب اتنا مل گیا تو یہ سوچتا ہے کہ اب کیا آخرت میں بھی اس کو ملے گا. کلا, ہرگز نہیں, نیور. انہو کان لی آیاتنا عنیدا, یقیناً یہ ہماری آیتوں سے اناد رکھتا تھا. اناد کیا تھا؟ انیمیٹی, بغض, دشمنی. سأرهقه صعودا, میں تو اسے انقریب ایک کٹھن چڑھائی پہ چڑھاؤں گا. جہنم کا ایک پہاڑ ہے, ڈیٹیل بعد میں آئے گی. یعنی میں اس کو جہنم کے ایک پہاڑ پہ چڑھا دوں گا, کٹھن, مشکل چڑھنا اس پہ. کیا کیا تھا اس نے؟ اب وہ ایکشنز نوٹ کریں جو اس نے اس محفل میں اختیار کیے تھے. انہ فکر وقدر, اس نے سوچا تفکر سے. وقدرا, پھر بات بنانے کی کوشش کی. فقتل کیف قدر، تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ثم قتل کیف قدر، پھر اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ایسے جملے کیوں بول رہے ہیں، تو آپ سوچیے یہ کیا کر رہا ہے، وقت کے نبی کے خاتمے کی اور اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوششیں، پروپیگنڈے کر رہے دیندار کے خلاف. اللہ کہہ رہے اس پہ اللہ کی مار. ثم قتل کیف قدر ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، یعنی ایسے غور سے دیکھا. آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کوئی شخص کھڑا ہے، پھر اپنی انگلی سے یوں یوں کر رہا ہے، پھر انگلی گھما رہا ہے، پھر غور کر رہا ہے، کمر کے پیچھے ہاتھ باندھا ہوا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا اور پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، یعنی ایکشنز بنا رہا ہے کہ میں بہت سوچ رہا ہوں. ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. خوب غور و فکر کیا کہ اس نبی کو کیسے بدنام کرے، ساری سوچ و بچار کے بعد اس کی زبان پہ کیا آیا، فقال ان ھذا الا سحر، کہنے لگا آخر کار یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو. یو سر، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یو سر کا لفظ دیکھیے، مؤثر اردو میں بولتے ہیں، چلتا جادو. اثر سے دیکھیں تو نشانی، آثار قدیمہ. مؤثر یعنی یہ بڑا چلتا ہوا جادو ہے، پرانا جادو مراد ہے.